ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरक्ताकर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया करो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना जनरेटर हम लोग अभी कृष्ण की अप्रकट लीला के संबंध में दो तीन दिनों से व्याख्या कर रहे हैं। तो जगत में जैसा कि साधारण लोग विचार करते हैं और द्वारका जाने पर कहाँ पर पहलिए ने मारा और कहाँ पर युद्ध हुआ, कहाँ पर मरे, सब वो सब दिखलाते हैं। दूसरे शास्त्रों में भी महाभारत इत्यादि में ऐसे ही वर्णन किया गया, किंतु यथार्थता ऐसा नहीं। स्वयं भगवान यादवों के सहित द्वारका में सब समय हैं, सन्निहितो हरि। वह न कहीं वहां से आते हैं जाते हैं, लोक लोचन से केवल दूर हो जाते हैं, लोग उनको देख नहीं पाते। किंतु संसार के जितने लोग हैं, साधारण लोग हैं, कृष्ण की माया से मोहित, माया से मोहित होकर के कुछ दूसरे रूप में देखते हैं। पर हमने बताया था कि प्रद्युम्न और शाम भगवान के नित्य परिकर हैं, वो कृष्ण के साथ में रहते हैं सब समय, तो वो भी द्वारका से कहीं इधर नहीं जाते। किंतु उनमें जो कंदर्प और कार्तिकेय विभूति विद्यमान जो थी, प्रद्युम्न में कंदर्प कामदेव, और सांब में कार्तिकेय इत्यादि के जो अंश थे वे अपनी शक्ति से उसमें से निकाल करके जहां है वहां पर भेज देते हैं और लोक लोचन में लोग जो देखते हैं वहां पर प्रद्युम्न है तो वो माया कल्पित अब रह जाते हैं। नित्य तो प्रद्युम्न होता तो सब कृष्ण के साथ में अप्रकट लीला में चले गए और बाकी जो देखे जा रहे हैं प्रद्युम्न इत्यादि पहले ही चले गए थे और जो कल्पित प्रद्युम्न है जो वहां पर दिखाई पड़ने लगे और वो समस्त जादुओं के सहित प्रद्युम्न इत्यादि सभी लोग प्रभास में गए और वहां जाकर के दान धर्म कर्म का अनुष्ठान किया और उस कर्म के फल से अपने अपने अधिकार के अनुसार में कोई स्वर्ग में कोई वैकुंठ में और द्वार कृष्ण वाले परिकर कहां रहे अपरकट द्वारका में कृष्ण के साथ में वहीं पर रहते और इसमें से जो देवता के अंश के थे वो देवलोक में बाकी लोग जो थे वो आकर के अपना यज्ञ अनुष्ठान किया और उसके फल से जहां जिसको अधिकार हुआ पहले प्रद्युम्न और इत्यादि अप्रकट हो लीला में चले गए उन्हीं को लेकर के थे यज्ञ किया प्रभास में किंतु जो माया के द्वारा मुग्ध थे उन लोगों ने कुछ और देखा। माया के मुग्ध जी वो क्या देखा ज्यादा लोग गए हैं सभी लोग कृष्ण बलदेव के साथ में वो कौन सा जगह प्रभात क्षेत्र में पिंडारक तीर्थ और वहां पर यज्ञ किया मद्यपान किया और युद्ध किया और ये देखे कौन हुआ नहीं किंतु देखा ये माया की रचित है। कैसे रचित है चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार एक राजा के पास में एक नट गया नट की जुआ स्त्री स्वयं जुआ बहुत सुंदर और उसके दो लड़के 8-10 वर्ष के वो गए राज्यसभा में पहुंचे और महाराज से कहा महाराज हम लोग नट हैं तरह तरह के खेल दिखलाते हैं तो आज आदेश दिया जाए कि अपने खेल से आप लोगों का मनोरंजन करो। राजा और रानी ने कहा जो ठीक है करो बस दो पोल गाड़ दिए और उस पर एक पतली सी रस्सी लगा दी और अपने सिर पर घड़े लेकर 1, 2, 3, 4 और हाथ में एक बांस लिया खट 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 कर रस्सी से ऊपर पहुंच करके वहां पर पहुंच गए और दोनों के पोलों के बीच में रस्सी के ऊपर में नृत्य कर रही है बैलेंस लेते हुए देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए पोल से नीचे उतरे। रानी ने अपने गले का हार वो नाच रही थी उसके गले में लेकर के दे दिया नौलखा हार बहुत प्रसन्न हुई और उसके दोनों लड़के जो अभी हैं 10-12 वर्ष के बड़े वीर हो गए हैं वो लोग उस हार को मैं लूंगा मैया मुझे दे मैया मुझे दे दोनों खींचने लगे। मैया ने हार निकाल करके बीच में बैलेंस करके छोड़ दिया अब जो बलवान होगा वो लेगा वो खींच रहा है इधर मैया ने तो छोड़ दिया वो खींच रहा है इधर दोनों समान बलवान हैं। तो तो एक को क्रोध आया, उसने मैन से तलवार खच ऐसा किया और उसने भी किया, और एक साथ में वो उसको मारा, वो उसको मारा, दोनों गिर गए। जब गिर गए मर गए तो मैं जाने हाय हाय हमारे दोनों लड़के मर गए, किसके लिए अब हम जीवित रहे। उसने एक से तलवार से गला था, और उसी मुहूर्त में उसका पति जो था देखा जी हमारे तो ये स्त्री और दोनों बच्चे मारे गए, बस उसने तलवार। ऐसे ये एक मिनट के अंदर में ये सारा दृश्य हो गया, जो कोई उसे बचा नहीं सका, कुछ कर नहीं सका, सब लोग अफसोस करते रहे। इसके बाद उसके लाश को वहां से हटाया गया, बड़े लोग दुखी, ये मनोरंजन के लिए किया गया और हो गया, ये तो बड़ा कष्ट कर रहा, बड़े दुखी हुए, घर में चले गए सब। दूसरे दिन एक पत्र आया राजा के पास, महाराज हम लोग मरे नहीं हैं, हम लोग जीवित हैं, पहला जो खेल दिखलाया उसके बदले में आपने हमें इनाम दिया 9 लाख रुपए का हार, दूसरा जो खेल दिखलाया हमने एक दूसरे को काट किया और खत्म कर दिया, तो ये भी हम लोगों का हाथ की सफाई खेल था, क्या कहते हैं जादू से आंख बांधन, हमने ये दिखलाया तो इसका इनाम हमें नहीं मिला, इसका इनाम कुछ मिलना चाहिए। और यदि आपको विश्वास न हो तो सवेरे हम लोग 10 बजे आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे, आप लोग आकर के हमारे घर पर देखेंगे, मैं मेरी स्त्री और मेरे दोनों बच्चे वहां पर हैं, आपका स्वागत करेंगे। दूसरे दिन राजा को बड़ा आनंद हुआ, रानी को लिया और अपने दरबारियों को लिया और वहां गए, देखा तो आगे से ही वो चारों माला लिए हुए राजा का, रानी का, बच्चों सबका स्वागत करने के लिए खड़े थे, कहा जी हमारा पुरस्कार चाहिए। तो यदि एक जादूगर नजर बंद करके ऐसी लीलाओं को कर सकता है तो सब मायापति विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाले उनकी माया कैसी होगी। मरा नहीं, उसको मरा दिखला दिया। एक बार मथुरा में यहीं पर कोई आया था जादूगर, ना वो नहीं, कोई दूसरा, उसने अपने लड़के को काट कर और उसका सिर बक्से में रख दिया, 4-5 ताले लगा दिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट वो जो पुलिस वाले होते हैं SP, सब लोगों से ताले डलवा दिए। जब डाल करके जब बैठिए, कहा अरे बेटे तू कहाँ हो, आ जाओ। तो वो बाहर से मैं आ रहा हूँ पिताजी, मैं आ रहा हूँ, और वहां से चला। साधारण एक जादूगर बीसी का तो का नहीं, क्या नाम है, बीसी राव, बीसी सर का, पीसी सर उसका तो कहा, तो वो रोज ही ऐसा करता है। तो ऐसे जादूगर लोग ऐसा कर सकते हैं, जो कोटि कोटि माया विश्व भंड कर रचने वाला जिनकी माया है, जिसको शंकर और संकर्षण तक भी नहीं जान पाते, जिनकी लीला का था वो हुआ नहीं और कर दिया, कैसे नजर बंद के द्वारा, उसी को यहां पर बतला रहे हैं। ये सब लीलाएं जो हुई, युद्ध नहीं हुआ और युद्ध दिखाया कौन, माया ने दिखला, और सारी लीलाएं ऐसी कर दी, क्यों, विमुख मोहिनी, भक्त भक्त संजोगिनी, भक्तों को आनंद देने वाली और बहिर्मुखों को मुग्ध करने वाली, मोहित करने वाली भगवान की लीला है, क्या वो शब्द है मुझे याद। तो ऐसी भगवान की लीला है, तो उसी के लिए कह रहे हैं, बहुत कुछ जानने योग्य इसमें बातें हैं। तो वो लोग प्रभात क्षेत्र गए, मद्यपान किया, परस्पर युद्ध किया, फिर कृष्ण बलदेव जी अप्रकट लीला में चले गए और कृष्ण के बहलिए ने बाण से विद्ध कर दिया और कृष्ण भी सुधाम को चले गए। ऐसा जो कहते हैं और समझते हैं वे लोग अज्ञानी हैं और कृष्ण के चरणों में महापराधी हैं ऐसा कहने वाले। ओ यू शुड स्पीक समथिंग।
For 3 days, Srila Gurudev has been explaining the circumstances behind Krishna becoming aprakat or unmanifest in the eyes of the people of this world. We see that even today, ordinary people, they go to Dwarka, they go to Hindutva, to Prabhas, and there the Brahmins and others who are showing people the holy places, they say, oh, this is the place where all the Yadavas were fighting, this is the place where Krishna was shot by the hunter and he died. And they explain all these katas. Why? Because these katas have been described in Mahabharata and in other places. But factually speaking, it was not like this at all. Krishna and his parikars, his eternal associates, they always reside in Dwarka. Sometimes they are prakat, they are visible to the eyes of the people of this world, and sometimes they are aprakat, they become invisible. They are always present, but the jivas who are bewildered by Maya, they cannot understand, and they see something else. Srila Gurudev explained that Arjuna, he is an eternal associate of Krishna, but in him, one amsa, a part of Kandarpa, that means the demigod Kamdev, entered into him. Sambha, also associate of Sri Krishna, son of Jagavati. So son of Jagavati Sambha, he is also eternal associate of Sri Krishna. And one amsa of the demigod Kartikeya, son of Lord Shiva, he entered into Sambha. So, when the Yadavas, they went to Prabhas, at that time, Krishna and his associates, they became unmanifest, aprakat. Their forms were not visible to the people of this world. And Kandarpa, the answer of Kandarpa was put in Prajumna, came out from his body and went to the Devalok, his own planet among the demigods. And Kartikeya also came out from Shambha and went to his planet. So when all the Yadavas, they went to Prabhas, then they did the Karma Anushkan, the performances of prescribed duties given in the Vedas. They performed yajna, that gave in charity. And Maya, Krishna's illusory power, made a show, made a presentation to the eyes of the conditioned souls, that at that time they drank wine and became intoxicated. They began to quarrel with each other, and all were fighting together, and they killed each other. It seems like this, but actually, this pastime fighting never happened. How can we understand it? Srila Vishnu Thakur gave an example. Once, a magician and his wife and two young sons about 10 or 12 years old, they came to the assembly of a king. And they requested the king, oh, if you will order us, we can do some tricks, we can do some show by which you will be very much entertained. So then, to entertain the king and his courtiers, they did some feats, some acrobatic feats. It was walking on a rope.
Walking on rope.
They tied a rope between two bridges. Huh? And walking on the rope, carrying so many pots on top of their head, and also dancing. All were watching and were very much amused by this. So after doing their show, then the queen wanted to give them a reward for their entertaining show. So she gave her own necklace. So then, the two young boys, oh mother, give me this, oh give it to me, not to me. And they began fighting with each other over the necklace. And the fighting became very aggressive. And one of them took out a sword. The other one also took out a sword. And they began to fight with swords. And then, at the same time, they stabbed each other. And both fell to the ground, mortally wounded. And they died. So then, the mother of the two boys, she was so upset that she also took the sword and killed herself. And then, only the father was left. And he saw, oh, my two boys are dead, my wife is dead. No use to stay alive. And he killed himself. One minute, everyone was watching and they were very happy seeing the show. And then the next moment, they saw, oh, the magician and his whole family, all are dead. And they became so upset and they returned to their homes. So then the next day, one letter came to the palace of the king. Hey, Maharaj, we are not dead. We are still alive. You have given us the remuneration for our first performance, but you did not give anything for our second performance. So if you don't have any faith in my words, then in the morning time at 10 o'clock, you should come to my place, he gave his address, and we will receive you very cordially. So then, the king was very happy and with some of his subjects. He went there to the place of the magician, and saw that he was very happy. His wife was there, alive and well and healthy, and the two children were healthy also. So, the question is raised. If an ordinary magician in this world can make a show of being dead when he's still alive, then what to speak? What kind of maya, what kind of illusion can be presented by the creator of unlimited universes, in which there are also millions of magicians just like him? So Srila Gurudev gave another example. In India there was one magician, his name was P.C. Sarkar. So once he invited many dignitaries, chief of police, district magistrate and others, to come to attend his performance. So in his performance, he put his young son inside a box and locked him inside.
No. He cut down the head, and head was kept in
one box.
Box.
I thought he put in the box and then cut the box in half like this.
No.
First cut.
He cut the head of that
son. So he cut off the head of his son.
And kept it in the box.
His head in one box and he locked it. And so then he called, oh my son, come on. And then from the back of the auditorium, his son was, oh father, and came running there. And also that he had not cut off his head, he was still alive, and his head was not in the box, it was still on his shoulders. So if an ordinary magician can do such a performance, then what kind of illusion can be presented by the creator of millions of universes? This maya of Krishna is so powerful that even Shankar, Lord Shiva, even Lord Brahma, no, even his own brother and first expansion, Sankarshan, Baldev, he cannot fathom the actions of his mystic power. So powerful. So Krishna has two types of maya, Vimukta Mohini and Unmukta Mohini. One energy by which he bewilders those who are averse to devotional service, and another energy also by which he can bewilder those who are attentive to devotional service. So in conclusion, the Yadavas drinking wine, becoming intoxicated, quarreling and fighting with each other, also Krishna being shot by the hunter and dying, all of these were simply an illusion. So, though they have been mentioned here and there in certain shastras, if someone would accept that the Yadavas have killed each other and that Krishna was killed by a hunter, then this is a great offense. This is a maha aparad against Bhagavan, the Supreme Court's Natural Guardian.
Very well. इन गीता में लिखा गया और जानान तिमांग मूढ़ा मानसिम तनुमाश्रितम महेश्वर मम भूत महेश्वरम, मैं जो भूतों का ईश्वर हूं प्राणी मात्र का। अवजानन्ति मूढ़ लोग जगत में मुझे मानुषी शरीर को प्रकट करके प्रकट हुआ हूं ऐसा कहते हैं। वे हमारे तत्व को नहीं जानते, हमारा देह अप्राकृत है। मूढ़ व्यक्ति ही अमोघ अमार प्रति अवज्ञा करते हैं, जैसे ये कृष्ण का ये शरीर है, ये मरणशील है, ये जन्म लिया और ये मर जाए। दुर्योधन इत्यादि इस प्रकार के विचार के थे और इसका फल क्या होता है ये गीता में बतलाया गया है। मोघाषा मोघ कर्मण मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी शीर। यदि मोघाषा तबे मत प्राप्तिर आशा तहां देर थाके ना। मोघाषा मोघासन मोघ कर्म और तबे तहां दे स्वर्ग आदि भोग वासनाओं व्याहत। स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे और मोघ ज्ञान यदि हां तो मुक्ति भी नहीं होगी। और फल सबे राक्षसी और आसुरी और मोहिनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, कुल में जाते हैं, ऐसे ऐसे जन्म ग्रहण करते हैं आसुरी। इनमें कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण देव जब थोड़े दिनों में ही विलीन हो गई, चली गई, खत्म हो गई, मारे गए, तो अवश्य ही ये मनुष्य देह है। कृष्ण का तो अप्राकृत नित्य शरीर होता है, नित्य है, किंतु यहां पर देखा जाता है तो वो मारे गए, तो ये शरीर नित्य नहीं है। दिव्य देह यदि होता तो बहुत काल में भी वो मरते नहीं, किंतु वो तो मर गए। रामचंद्र जी मरे नहीं, वो उदाहरण देते हैं, रामचंद्र मरे नहीं, वो क्या हुए, अयोध्यापुरवासी सबको लेकर के कृष्ण तो मर गए। दूसरे कुछ कहते हैं कृष्ण जय प्रकार जिस प्रकार कौरव वंश का ध्वंस किया उसी प्रकार यादव वंश का भी ध्वंस प्रभास में कर करके और अपने कुल का भी अवसान किया था, माने उनका भी संहार करवा करके स्वधाम को चले। इस रूप से अधम मध्यम विज्ञ मानी दुर्जन कुमति मनुष्यगण जल्पना और कल्पना करते हैं कृष्ण के संबंध में। उन लोगों को कहा गया है जैसे एक शुद्ध सफेद शंख है और सफेद शंख एक आदमी को पीलिया रोग हो गया तो शंख को कैसा देखेगा, मलिन और पीला देखेगा। शंख का दोष नहीं है, ऐसे कृष्ण का दोष नहीं है,
माया के द्वारा मलिन जिनका चित्त है, ऐसे ही कृष्ण लीला में ऐसे ही उनके शरीर के संबंध में आरोप करके के नाना प्रकार के मतवाद करते हैं। भगवान के लीला और अंतर्ध्यान के संबंध में कहीं कहा गया है भागवत या कहां दिया नहीं है, प्रदर्श्य तप्त तपसाम वितिप्त दृशांगणम आदायस्तद आधार जस्तु स्वबिंबवत लोकलोचन। जिन्होंने जिन्हें अपनी तपस्या को पूर्ण नहीं किया, जहां देखे नयन अभी कृष्ण के दर्शनों से अतृप्त थे, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण अपने बिंब को लेकर के अंतर्ध्यान हुए, प्रतिबिंब को छोड़ दिया। तात्पर्य क्या, बिंब शब्द का टीकाकारों ने यह किया है, लोकालांग लोचनानी निमग्नाज्यत तादृशी तादृशम विषम स्वदेहम आदाय एवं अंतर्ध्यान। अपने शरीर को लेकर के ही, अपने बिंब माने शरीर को लेकर के ही कृष्ण अपरकट लीला में चले गए। गोपाल तापनी उपनिषद में अच्छा और भी बतलाया गया, कृष्ण द्युमनि निम्नोच, ये भागवत का है, शाम के समय में सूर्य अस्त होते हैं किंतु सूर्य समाप्त नहीं हो जाते, सूर्य का अस्तित्व ही नष्ट नहीं हो जाता। जैसे दूसरे दूसरे देशों में सूर्य प्रकाशित होते हैं, यहां से फिर वहां कहीं न कहीं किसी पृथ्वी के गोलार्ध में वो प्रकटित रहते हैं, ठीक उसी रूप में कृष्ण विश्व ब्रह्मांड के किसी न किसी लोक में अपनी लीला करते हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। वो क्या है, अग्नि आला चक्र की भांति उनकी लीला घूमती रहती है और कहीं वे देखे जाते हैं कहीं नहीं, और एक लोक में पृथ्वी लोक में लौट करके आने में ब्रह्मा जी का एक दिन लग जाता है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया, गोविंद सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावनपुर भूरूह तलासीनम। वृंदावन के कल्पतरु के नीचे सच्चिदानंद विग्रह गोविंद मर्तों के सहित सब समय वहां विराजमान रहते हैं वृंदावन। मैं उनका ध्यान करता हूं, मध्वभाष्य में नहीं कहा गया है तो वो मरे कहां, ये तात्पर्य। मध्वभाष्य में कहा, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्धो अयम मत्सह कुर्मह इत्यादि। मैं ही बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रभृति मत्सह कुर्म बारा नरसिंह बामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि प्रभृति सत्सत अनंत रूप में अवतीर्ण हो जाते। इन लोगों का जन्म नहीं होता है, इनका मृत्यु भी नहीं है, ये लोग निर्गुण है, तो इनका आदि मैं कृष्ण कैसे सगुण और मृत्यु को प्राप्त होने वाला हमारा शरीर होगा। इसी प्रकार से ब्रह्मांड पुराण में, बिंदु उपनिषद में, समुद्रो उपनिषद में, ब्रह्मांड पुराण में, महाबराह पुराण में, निशिंग पुराण में कृष्ण के नित्य लीला का वर्णन और उनके शरीर का वर्णन है। इसलिए कृष्ण कभी नहीं मरते और वो व्याध के मारने से नहीं मरेंगे, बल्कि उसमें एक चीज है, सूर्यास्त के समय ज्यादा लोग, यह थोड़ा सा विचार है, सूर्यास्त के समय जादू में परस्पर युद्ध की कथा भागवत में कही गई। सूर्यास्त के समय में ये युद्ध हुआ, सूर्यास्त के समय में इन लोगों का परस्पर युद्ध हुआ, 56 कोटि यादव का युद्ध हो, 56 कोटि 56 कोटि करोड़ कम जगह में नहीं होगा, और कितना कोलाहल होगा, मारपीट होगा, और वहां रक्त की धारा बहेगी, ऐसी होता, और लोग कोलाहल भी खूब होता। और उस समय में इतना युद्ध हो रहा है, वहां पर व्याध आएगा कैसे, जहां पर इतना बड़ा भारी युद्ध कोलाहल हो रहा है, यदि यह बात सत्य होती तो वो व्याध वो कैसे वहां आता। और उसी समय में ही मृग जो है वो भीरु जाती है, यहां जब युद्ध हो रहा है तो वहां से आगमन की कल्पना कैसे हो सकती है, वो युद्ध में इतना भीषण कोलाहल और ये हो रहा है, तो वहां पर हिरण किस लिए आएगा, जो उसकी चिंता कर रहे हैं, जो हिरण आया उसको मारा, व्याघ भी नहीं आ सकता, हिरण भी नहीं आ सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ये संभव नहीं। इसलिए युद्ध इत्यादि व्यापार सामंजस्य अपातत है ना, इन विचारों से सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। किंतु यदि ऐसा हो, ज्यादा लोग मधुपान करके अंतरहित हो जाने के बाद में स्थान खाली हो गया और उस समय में बाद आया, तो ये को माना जा सकता था, ये भी नहीं है तो अभी माना जा सकता था, जैसे वहां पर कोलाहल नहीं था, वो लोग अंतरहित हो गए, इसके बाद में शून्य था। किंतु उस खून की नदी जहां बह रही है और सब मरे पड़े हुए हैं और समय शाम का ही है, ऐसे समय व्याध और मृग का शंका पता नहीं, सामंजस्य नहीं। जैसा भी हो, ये सब युधिष्ठिर अर्जुन इत्यादि का प्रेम वर्धन करने वाली लीला है, उनको ये आनंद देने वाला, और असुरों के लिए, कुमति मनुष्यों के लिए, अपराध युक्त मनुष्यों के लिए ये लीला कैसी है, माया मोहिनी, विमुख विमोहिनी, स्वमुख उन्मुख उन्मुख मोहिनी विमोहिनी, ये ठीक ऐसी लीला है। इति श्री श्रीमद्भागवते कृष्ण सुधाम गते लीला वर्णनम अध्याय समाप्त। चलो
all their desires
unsuccessful. Whatever they want is never fulfilled. And what they want is also quite contaminated and going in the wrong direction. Moga karma no. Whatever karma anusthan they perform, they may do some karmas for elevation to the heavenly planets. But if they think in this way about my transcendental form, then they will never attain Swargaloka. They can't even go to heaven by doing karma anusthan. Their knowledge is all good. That means they can never get mukti even. They can never attain liberation. Rakshasim asrim bhava. They adopt the mentality of rakshasas, demons, only practice because they have taken shelter of my external rule and potency. So, those who see Krishna's body as being material, they're completely wrong. Lord Ramachandra is one expansion of Sri Krishna. His body is not material. When he discovered his Ananita's pastimes, there and then, in the presence of all the residents of Ayodhya, and taking them with him, or he went to his eternal abode. So how will Krishna's body be material? It's quite impossible. Only those who are the most fallen, whose intelligence is polluted, they speak so many irrelevant things, and they have so many misconceptions about Sri Krishna. How is it that they speak nonsense and have irrelevant conceptions? Should I give an example? There's one conch shell. It's completely pure and completely white. But a person is afflicted by the disease jaundice, bilirog, jaundice. So if you have jaundice, then if you look at something white, it appears to be yellow. So that person, they will give a testimony. This conch shell is yellow. They will have a wrong idea and they will speak incorrect conclusions also. Why? Because their own defective vision, they are superimposing upon the carbon shell. They're doing arrow. Superimposing their wrong conception and their misperception onto the conch shell which is pure. So in the same way, those who are bewildered by Maya, they superimpose their material conceptions onto the eternal transcendental body of Sri Krishna. Another example is given. In the evening time, the sun sets, but the sun is not finished. Anywhere else, on another part of the planet, someone will see that that same sun is rising. So in the same way, Krishna, his pastimes, they become unmanifest in one place and manifest on another earth planet in another universe. In this way, it's like Ala Chakra, the firebrand. Firebrand is one, and if you spin it very quickly, it makes a circle and appears to be everywhere. So Krishna, his pastimes, they're moving very quickly from universe to universe. And in the duration of one day of Lord Brahma, Krishna does a complete tour of all of the unlimited material universes and comes back to the original point in one day of Brahma. So in the Gopalakampani Upanishad, there is stated Satyadananda Govinda, that Govinda, Sri Krishna, the cowherd boy, he is eternally situated beneath the desire tree, and I meditate upon his lotus feet. In the
Madhvacharya's commentary,
in the commentary of Sri Madhvacharya, there he explains that it is common knowledge that many avatars, the incarnations like Kurma, Matsya, Varaha, Vamadeva, Narasimha, Kalki, they're all transcendental and eternal. So how will it be that the origin of all incarnations is body will be material? It is quite impossible. All those various forms of the avatars are recognized as being nirgun, completely free from the laws of material nature. So how will Krishna's body be sargun and subject to destruction? It is impossible. In the Ramana Puran, in Varaha Puran, in the Narasimha Puran, and other Puranas, the Nitya Lila of Krishna has been described, his eternal pastimes. So therefore, the conclusion is that Krishna never dies. He cannot be killed. Another comment has been given here. The fight between the members of the Yadu dynasty took place at sunset. The sun was just going down, the day was over. How many members of the Yadu dynasty were there? 56 crore. So there was 560 million Yadavas, all fighting with each other. So if there are 560 million Yadavas, all fighting and killing each other in one place, then there will be such a thunderous sound. And there will be rivers of blood flowing in all directions. So, how is it possible that an answer will come there? After the sun goes down, we'll come to a place where 560 million people are having a massive battle and rivers of blood are flowing everywhere, and the hunter will be looking, trying to find the deer. Is it possible? No, it is quite outrageous and absurd. So, therefore, this presentation of the disappearance of Krishna and the Yadu dynasty, this is only for those who are apradhi, those who are offenders, those who have polluted intelligence, those who are vimukha mohini vimohita, who have been bewildered by Krishna's vimukha mohini shakti, that is the power which covers the intelligence of those who are averse to the service of his lotus feet.
Hare
Krishna.
Hare Krishna. Surekha said that one letter has come to Ruth Sanatan.
Oh, you are Surekha Sikhar.
Only 10 devotees. Srila Arun Maharaj said that only 10 devotees have registered with him for going to Faridabad.
Small bus.
If that is the case, then we should cancel two buses and we should go and take only one bus. Is it true? And if not, please raise your hands and also tell that you are boarding the bus from Vrindavan or Mathura. First, please raise your hands those who are boarding the bus from Vrindavan. And those who are boarding the bus from Mathura.
Mathura is going to be.
Hare Krishna. Short announcement on behalf of Srila Gurudev, all the senior Vaishnavas, sannyasis. We welcome all the new devotees who have arrived today, yesterday, before. Srila Gurudev has called all of you to participate in Sri Vrajananda Parikrama. So we will do our best to look after all the different necessities. But we humbly request you to cooperate with the organization. We want you to fill out one form. Please do this as soon as possible. The forms are obtainable from myself or to the media. You have about 5 more days to fill out this form and follow the instructions. And we request you to know that some of you are very poor and they may think I cannot pay the fee.